फटाफट से वंशिका भी अब वहां से निकलकर वापस आकर अपना ट्रैक सूट पहनकर कार में बैठ गई थी और बस इसी बात की दुआ करने लगी कि अंदर जो कुछ भी हो बस आस्था ठीक रहे। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया इस वक्त राजा की तरह अपने फार्म हाउस के हॉल में बैठा हुआ था और उसके सामने तीन लोगों को काला कपड़ा मुंह पर लपेटकर बिठाया गया था। उसके अलग अलग साइड में आकाश, सुमित, टाइगर, मारिया और देव खड़े हुए थे। आस्था, जो कि फार्म हाउस के अंदर आ गई थी, एक ऐसी जगह पर मौजूद थी जहां से वो अरमान और उन लोगों को आसानी से देख सकती थी। वो सोच रही थी कि किस तरह से जाकर अब आगे उसे उन लोगों की मदद करनी होगी और कैसे वो इन तीनों को बचाएगी, क्योंकि इस तरह से अरमान के सामने जाना किसी भी लिहाज से खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन आस्था को इस बात का 100% यकीन था कि अरमान मरते मर जाएगा लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं होने देगा। आखिरकार अरमान का वंशज उसके पेट में पल रहा था और अरमान सिंघानिया उसे पागलों की तरह प्यार करता था, इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता था। फिलहाल आस्था ये देखना चाहती थी कि आखिरकार अरमान यहाँ क्या कर रहा है और क्या वाकई वो सामने काला कपड़ा पहने हुए लोग बैठे हुए हैं, क्या अरमान उनकी जान लेने वाला है। वेल, अरमान का चेहरा तो कवर था, साथ ही साथ ध्रुव, आकाश, सुमित और जितने भी अरमान के आदमी थे उन सब का चेहरा पूरी तरह से कवर था। थोड़ी देर तक उन गुनाहगारों को किलर लुक देने के बाद अरमान ने एक गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने जाकर जल्दी ही उनके चेहरों पर से कपड़ा हटा दिया था। अब तो आस्था की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वहीं ध्रुव भी थोड़ा सा बेचैन हो गया था क्योंकि वहां उसके सामने डिम्पल, आस्था की बहन प्रियंका और उसका बॉयफ्रेंड मौजूद था। उन लोगों को वहां देखने के बाद आस्था की तो हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि एक बार पहले भी आस्था ने प्रियंका के बॉयफ्रेंड की फोटो देखी थी जिस वक्त प्रियंका की शादी हो रही थी और वो उसके साथ भागने की प्लानिंग कर रही थी। आस्था ने उस वक्त प्रियंका के फोन में माय लव के नाम से उसके बॉयफ्रेंड का नंबर देखा था जहां पर उसकी फोटो भी लगी हुई थी। आस्था एक पल में ही उसे देखकर पहचान गई थी। अब तो आस्था की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था कि आखिर अरमान इन लोगों के साथ क्या करने वाला है और ये लड़की कौन है। डिम्पल को वो पहले से ही पहचानती थी। डिम्पल वही थी जो उस वक्त होटल में मौजूद थी और जिसने रौनक को ड्रग्स दिया था। डिम्पल को देखकर ध्रुव का मूड खराब हो गया था। वो सोच रहा था कि उसे इस घटिया सोच रखने वाली लड़की से मोहब्बत कैसे हो सकती थी। प्रियंका के चेहरे पर डर के भाव थे और देव थोड़ा आगे आया। देव का चेहरा भी पूरी तरह से कवर था। देव प्रियंका की ओर देखकर सख्त आवाज में बोला, डेविल किंग के सामने अपना गुनाह कबूल करो। अब जैसे ही देव ने ये कहा, प्रियंका थरथराते हुए कांपने लगी क्योंकि प्रियंका पहले भी वहां एक बार आ चुकी थी लेकिन तब तो अरमान ने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया था। लेकिन इस बार बात कुछ और थी क्योंकि अरमान के सामने ये सच भी आ चुका था कि मॉल में उस दिन आस्था को किडनैप करने की प्लानिंग प्रियंका ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर रची थी ताकि वो आस्था के साथ गलत बिहेवियर कर सके। लेकिन कुछ गलतफहमी की वजह से उस वक्त नानीमा अगवा हो गई थी। इस काम के लिए मारिया, टाइगर और देव को अरमान ने शहर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले लगा रखा था, इसीलिए ये तीनों गाँव में अरमान के साथ मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने इस बात का पता निकलवा लिया था। राघव के दोस्तों को तो पहले ही सजा दी जा चुकी थी, बुरी तरह से उन्हें मारपीट कर जिंदगी भर के लिए बेकार बना दिया गया था, लेकिन प्रियंका के बॉयफ्रेंड राघव और प्रियंका को सजा अरमान किंघानिया खुद देने वाला था। फिलहाल उन लोगों को वहां देखकर अब प्रियंका और प्रियंका के बॉयफ्रेंड राघव को सिर्फ और सिर्फ अपने सामने इस वक्त काली काली परछाई, काले काले यमराज ही नजर आ रहे थे क्योंकि अरमान पूरी तरह से काले कपड़ों में था, ब्लैक कलर का मास्क पहने हुआ था जिसकी वजह से उनकी शक्ल नहीं देख पा रहा था। तब उसका बॉयफ्रेंड राघव रोते हुए बोला, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम ये नहीं बोलती कि तुम्हें अपनी बहन से बदला लेना है, तुम अपनी बहन से जलती हो, उसे सबक सिखाना चाहती हो और तुम चाहती हो कि मैं और मेरे दोस्त मिलकर अगवा करके तुम्हारी बहन का रेप करें, तुम्हें ऐसी घटिया साजिश नहीं करना चाहिए थी। अगर तुम हमें नहीं भड़काती तो हम ऐसा कुछ कभी नहीं करते और न कभी भी हम आस्था अरमान सिंघानिया को अगवा करने की कोशिश करते। उसका बॉयफ्रेंड रोते रोते प्रियंका को ही सारा दोष देने लगता है। तभी प्रियंका डरी हुई आवाज में बोली, हाँ हाँ, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, मैं नफरत की आग में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई थी, लेकिन हमें छोड़ दो, हमारी कोई गलती नहीं है। ये सारी गलती उस आस्था की है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, उसने मेरी जगह ली है, इतने बड़े घर की बहू बनकर मेरी जगह लेकर बैठी है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद आस्था की जिंदगी के आसपास भी नहीं भटकूंगी और ना ही उसे उसके साथ कुछ गलत करने की साजिश करूंगी। ये बोलकर प्रियंका रोने लगी। वहीं देव अब घूर कर डिम्पल को देखने लगा था। अब डिम्पल फटाफट से फट पड़ी और अपना गुनाह कबूल करते हुए बोली, हाँ हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने तो रौनक को ड्रग्स दिया, लेकिन मेरा इरादा सिर्फ उसे उन लोगों से बदला लेने का था। रौनक और आस्था ने मिलकर मेरी उस दिन होटल में काफी ज्यादा बेइज्जती की थी, वो भी मेरी विदेश से आई हुई कजन मेहमान के सामने, तो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी,
इसीलिए मैं उन दोनों को शर्मिंदा करना चाहती थी। अब तो सारा सच सुनने के बाद अरमान ने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। वहीं ये सारी बातें सुनकर आस्था का भी खून खौलने लगा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रियंका उसके बारे में इतनी गलत सोच रखती होगी और उसके साथ इतनी बुरी घटिया हरकत करने की कोशिश करेगी। इस वक्त आस्था का मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। आई तो यहाँ पर इन लोगों को बचाने के लिए थी, लेकिन अब तो वो सोच रही थी कि इन लोगों को वो अपने हाथों से ही मार डाले। अचानक अरमान की दमदार आवाज वहां गूंजी और वो बोला, इन तीनों को इतनी बेरहमी से मौत दो कि मौत भी उनकी मौत को देखकर कांपे, और उनके छोटे छोटे टुकड़े जंगली जानवरों को खिला दो और इनको जिंदा ही ब्लैकी, टाइगर और शेरा के पिंजरे में सामने डाल दो। वैसे भी उन्होंने 3 दिन से कुछ खाने को नहीं दिया गया है। डिंपल, जो कि पहले से ही काफी ज्यादा कमजोर थी क्योंकि उसे अरमान ने बहुत पहले ही अगवा करवा लिया था और उसे आहान के कहने से दिन रात टॉर्चर किया जा रहा था, अब तो उसके शरीर में जान ही नहीं बची थी और उसकी रोने की भी शक्ति खत्म हो चुकी थी। वहीं आस्था ये सजा सुनकर बुरी तरह से हड़बड़ाकर कांपने लगी थी। भले ही प्रियंका ने उसके साथ कितना ही गलत करने की कोशिश की हो, लेकिन प्रियंका उसकी नानी माँ की पोती है, तो भला इस तरह से वो प्रियंका की जान कैसे जाने दे सकती थी। अचानक आस्था जोरों से चीखते हुए बोली, नहीं ए। अब जैसे ही आस्था की चीखने चिल्लाने की आवाज वहां गूंजी तो अरमान के माथे पर बल पड़ गए थे और सभी लोग अब आस्था को गौर से देखने लगे थे। आस्था ने अपना चेहरा कवर किया हुआ था, लेकिन अरमान आस्था को हर रूप में पहचान सकता था। उसकी आंखों को देखकर, उसके चलने के स्टाइल को देखकर अरमान सिंघानिया उसे पहचान सकता था, और आस्था के शरीर से आती हुई भीनी भीनी खुशबू अरमान की नाक तक जा रही थी। अरमान ने घूरकर बारी बारी से आकाश, सुमित, ध्रुव, टाइगर की ओर देखा और सभी लोग अब थोड़ा सा सहम गए थे कि आखिर अचानक आस्था यहाँ कैसे आ सकती है और उन लोगों ने इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखा। लेकिन ठीक उसी वक्त आकाश ने मारिया की ओर इशारा किया। मारिया तुरंत उठ खड़ी हुई और फटाफट से वो डिंपल, प्रियंका और उसके बॉयफ्रेंड के सामने जा पहुंची और उन्हें उठाकर सीधा अंदर कमरे में ले जाने लगी। अब एक एक करके वे तीनों वहां से चले गए।
अब वहां हॉल में सिर्फ अरमान और आस्था ही मौजूद थे। अरमान के चेहरे पर अभी भी मास्क लगा हुआ था। आस्था भी अरमान को मास्क के पीछे से घूर कर देख रही थी। अचानक अरमान ने आगे बढ़कर आस्था को गले से लगा लिया था और उसे गले से लगाकर हल्की मुस्कान दबाए हुए आवाज में बोला, जाना तुम ठीक हो ना? तुम्हें यहां आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था की तो आंखें बाहर निकलने को तैयार थीं, क्योंकि उसने तो सोचा था कि अरमान उसे वहां देखकर गुस्सा करेगा, उसे डराएगा, धमकाएगा या कुछ ड्रामा करेगा। लेकिन ये क्या, अरमान तो उसे बोल रहा था कि उसे यहां आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। आस्था कन्फ्यूजन से अरमान की ओर देख रही थी। अरमान मुस्कुराते हुए सॉफ्ट वॉइस में बोला, तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं अपनी नन्ही सी आफत बीवी को नहीं जानता हूँ? मेरी बीवी का दिमाग कब और कैसे चल सकता है मैं जानता हूँ कि जिस वक्त तुमने वो फोन कॉल पर सब सुना था, तभी तुम्हारे दिमाग में ये खिचड़ी पक चुकी थी कि तुम्हें उस लड़की की जान बचानी है। लेकिन मैं जानबूझकर तुम्हें इस लड़की का असली चेहरा दिखाना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें आसानी से यहाँ तक आने दिया। और वंशिका, जो कार में तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है, वो इस वक्त कहीं और नहीं बल्कि इसी फार्म हाउस के कमरे में मौजूद है। तुम चाहो तो जाकर उससे मिल सकती हो। अब तो आस्था पूरी तरह से चौंक गई थी। जो बॉडीगार्ड वंशिका को रास्ता बता रहे थे, उन्होंने ही वंशिका को पकड़कर पहले ही फार्म हाउस में ही कैद कर दिया था और अरमान को इस बात के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी थी। एक पल के लिए अरमान के इस एक्शन से वो इम्प्रेस हुई थी, क्योंकि अरमान ने काफी अच्छे से प्लानिंग की थी। फिलहाल गहरी सांस लेते हुए आस्था नॉर्मली बोली, चाहे उन लोगों ने कोई भी गलती क्यों ना की हो, लेकिन आपको कोई हक नहीं है किसी की भी इस तरह से जान लेने का। अरमान तेज आवाज में बोला, नहीं, इन्हें जीने का कोई हक नहीं है। अब जैसे ही अरमान ने ये बोला, आस्था चौंक गई थी और वो रोबदार आवाज में बोली, मैं कुछ नहीं जानती, आप किसी की भी जान नहीं लेंगे, और वैसे भी मैं सिर्फ और सिर्फ 9 दिनों के लिए यहाँ हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन जब तक मैं यहाँ आपके घर में हूँ, आपके साथ हूँ, तब तक आप किसी की जान नहीं लेंगे। अब जैसे ही आस्था ने जाने की बात बोली, अरमान अपने सर की नसों को दबाने लगा। लेकिन ध्रुव, जो कि समझ चुका था कि अरमान आस्था को इस तरह से एक साथ छोड़ना ठीक नहीं लगा, वो तो किसी जरूरी काम से वहां आया था। अब जैसे ही उसने अरमान को इस तरह से अपने सर पर टैप करते हुए देखा, तो वो समझ गया कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। अरमान भाई का गुस्सा कितना ज्यादा भयंकर होता है, ये बात ध्रुव और बाकी सब अच्छी तरह से जानते थे। हालांकि आस्था ने अभी तक अरमान का असली रूप नहीं देखा था कि वो कितनी बेरहमी से लोगों की जान लिया करता था। फिलहाल जल्दी ही ध्रुव वहां आ पहुंचा था और सीरियस वॉइस में बोला, भाई, इससे पहले कि आप भाई को जज करें, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे ही ध्रुव ने वहां आकर ये बोला, अरमान घूर कर ध्रुव को देखने लगा और उसकी ओर देखकर नाखुश होकर बोला,
ध्रुव, किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या मेरी बीवी को सारा सच बताकर उसे डराना चाहते हो? अरमान नहीं चाहता था कि आस्था के सामने ये बात आए कि उसने किसी सिचुएशन में वो सारे मर्डर किए थे, क्योंकि वो समझता था कि उसकी बीवी को खून खराबा और ये सारी बातों से दूर रहना चाहिए। आखिरकार वो माँ बनने वाली है, और अगर आस्था सच जाने भी तो ये उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन तभी ध्रुव अरमान की ओर देखकर शांत स्वर में बोला, भाई प्लीज, मैं जानता हूँ कि आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम आपके किसी भी किए गए काम का एक्सप्लेनेशन दें, लेकिन भाभी का सच जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और भाभी आपसे अलग नहीं है, वो आपका ही एक हिस्सा है। जैसे ही ध्रुव ने ये बोला, एक पल के लिए अरमान वाकई ध्रुव की बात सुनकर इम्प्रेस हुआ और वो शांति से जाकर सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठ गया था। इस वक्त अरमान को देखकर एक राजा की फीलिंग आ रही थी, मानो कोई राजा वहां बैठा हुआ हो। तभी ध्रुव ने आस्था की ओर देखा, क्योंकि वो समझ गया कि अरमान शांति से एक जगह बैठ गया है, तो मतलब उसने उसे आस्था को सच बताने की परमिशन दे दी है। अब जल्दी ही ध्रुव ने आस्था की ओर इशारा किया और उसे एक कमरे में चलने को बोलने लगा। आस्था ने एक नजर अरमान की ओर देखा और ध्रुव के पीछे पीछे चली गई। जैसे ही वो वहां गई, उसने देखा कि वहां पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी। उस स्क्रीन पर कुछ लोगों की शॉर्ट वीडियोज ऐड थी।